قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر 9 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف ہی کی آیات کی کنٹینیوشن ہے اس میں قوموں کے رویوں کی بات ہے جب کسی بھی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے معاش پر اور اپنی اکانومی پر پڑتی دکھتی ہے تو اس وقت ان کو اللہ کی بات ماننا اور بھی مشکل ہوتا ہے یہی مسئلہ کل قوم شعیب کا تھا اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں اسلام کی دی ہوئی ہدایات کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے ایسے وقتوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال کس نے دیا ہم سب کس کی طرف سے آئے اگر آج اس کو راضی کر کے کچھ لیں گے تو ناراض کر کے کس سے لیں گے تب بھی تو اسی سے ہی لینا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور ماں بچے سے خوش ہو تو زیادہ دے گی کبھی غصے میں بچے کے مجبور کرنے پہ کچھ دے بھی دے لیکن کہتی ہے کہ مجھ سے پھر بات نہ کرنا یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنے مال میں حرام حلال کا فرق نہیں کرتا تو اللہ مال تو دے دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ تم میرے سے بات نہ کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی کمی بیشیوں سے پاک کر دے کیونکہ جو چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی وہی ہمارے اعمال میں بھی چھلکے گی اور اسی کا اثر ہم اپنی اولادوں میں بھی دیکھیں گے پھر اس کے بعد حضرت شعیب کا ایک جملہ آیت 89 میں کہ جب قوم نے بات نہ مانی تو کیا کہا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق یہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی آپ کی دعوت پہ لبیک نہ کہے اور آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ کو بھی اس کی غلط بات نہیں ماننی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون پیش کیا ہے آیت 94:5 میں کہ جب کسی بستی میں کوئی نبی آتے ہیں لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں جکڑ دیتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کریں آج انبیاء کرام نہیں ہیں تو اس کی جگہ دین والے ہیں لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے لوگ برائی کو نہیں سمجھ پاتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچھے دن بھی دیتا ہے حتیٰ کہ پھر انسان بالکل یوز ٹو ہو جاتا ہے اور اکثر کیا کہتا ہے یہ تو دن ہے ہمارے باپ دادا پہ بھی اچھے دن آئے ہمارے باپ کا بھی کاروبار ڈوب گیا تھا ہمارے ابا کا کام بھی ڈوب گیا تھا پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو یاد رکھیے کہ نصیحت لینے کی ضرورت ہے اور آیت 96 ہم سب کو زبانی یاد کر لینی چاہیے کہ رزق کے دروازے آسمان سے کب کھلتے ہیں جب ایمان لانے کے بعد تقوی کا اختیار کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرما دے اس پہ ایک ٹاپک بھی ہے رزق کی کنجیاں پوری بک ہے اس میں سے خاص طور پہ یہ چیزیں پڑھی گئیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کو آسان کر دے اس کے بعد پوری آیات میں اللہ تعالیٰ کے مختلف قوانین ہی ہیں کہ جب لوگ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اور فرعون کی طویل کہانی کہ جس میں ہم سب کو یہی سکھا دیا کہ دیکھو ماضی کے مسلمانوں نے جب اللہ کی بات نہ مانی تو ان کے تذکرے آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں ہیں اگر وہ مسلمانوں تمہارے بعد کوئی کتاب ہوتی تو تم سوچو کہ آج کے تمہارے حالات اس میں کن لفظوں میں پیش کیے جاتے اور آیت نمبر 126 میں دعا بھی سکھا دی جب حالات تنگ ہوں جب مسلمانوں کو کوئی تھریٹ کرے جب ہم اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں کسی کے زیر بار ہو جائیں تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان رکھنا یعنی ایسے سخت حالات نہ آ جائیں کہ ہم اپنا اسلام بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں इसके बाद अल्लाह सुबहाना तला ने बनी इसराइल पर मुसलसल जो अजाब आए उनका तस्करा किया, लेकिन जो बात इसके एंड पे निकली वो क्या थी कि ये कौम इन अजाबों को देखकर अल्लाह से वादे भी करती, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब टल भी जाता, जो ही हालात अच्छे होते वो दोबारा वही कुछ करने लगते। क्या आज हमारा भी यही हाल नहीं है? जलजला आता है, चंद दिन तक मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, ज़रा कोई जंग की धमकी मिलती है, थोड़ा सा खौफ आता है, लेकिन उसके बाद फिर लोग वही करने लग जाते हैं जो करते थे। और हकीकत यह है कि लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, हालांकि वो पहली गलतियों का खमियाजा भुगत चुके होते हैं। फिर इसके बाद फिरौन के डूबने की बात के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात देने का इरादा किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई के लिए, वो फोकस्ड होने के लिए कोहे तूर पे चले गए। ये बात मेरे आपके लिए भी अमल की है कि आज हम कितना को अपने आप को तन्हा करते हैं अल्लाह की बात को गौर से सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने के लिए। फिर इसके बाद हज़रत मूसा और अल्लाह ताला का कलाम भी है जो बड़ा खूबसूरत है। हकीकत है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया था तूर पे। हमसे अल्लाह ताला कलाम करता है जब हम कुरान पढ़ते हैं, और हम अल्लाह से कब कलाम करते हैं? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें दोनों का आदी कर दे। फिर इसके बाद आप देखिए कि आयत नंबर 146 जो इस पारे की बहुत खूबसूरत आयत भी है और आयत तदब्बुर भी है, एक वो क्या है कि कुछ लोगों का हाल यह है कि जब उनको वहीं यरा सबीला रुश्दी ला यत्तखिज़ूहु सबीला, उसको नहीं पकड़ते, यानी जब इनको नेकियों का मौका मिले, कोई खैर का रास्ता दिखाया जाए, उस पे चलने में हीलो हुज्जत करते हैं। लेकिन वहीं यरा सबील अलगई, जब कोई बुराई का रास्ता, नाफरमानी का रास्ता, नफ्स की खुशी का रास्ता देखते हैं, तो यत्तखिज़ूहु सबीला, तो उसको वो रास्ता बना लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आयतों को झुठलाया और उससे गाफिल थे। हकीकत है कि ये आयत हम सब की तवज्जो की तलबगार है। ज़िंदगी के इस सफ़र में जब हम हिदायत के सफ़र पर चलते हैं, जिसको आप सिराते मुस्तकीम भी कह सकते हैं, तो बार बार बीच में हमारा टकराव उन लोगों से और उन हालात से होता है कि हम नासमझी के साथ ही सही, लाशौरेपन में ही, लेकिन हम उस रास्ते से हट जाते हैं। जैसे क्रिस क्रॉस अगर आप डालकर देखें तो एक सबीलो रुश्त है तो दूसरा सबीलो गई है। बीच में राउंड अबाउट्स आते हैं, इन राउंड अबाउट्स पर इंसान भूल ही जाता है कि उसने नेकी के किस काम की नीयत की थी। बाज़ दफ़ा रमज़ान में बहुत बड़ी बड़ी नेकियों की नीयतें की जाती हैं, बाद में कायम नहीं रहा जाता क्योंकि राउंड अबाउट पर रास्ता बदल जाता है और हम दूसरी रोड पे चढ़ चुके होते हैं। इसके बरक्स आप देखिए कि एक शख्स जो गलत काम कर रहा है, सबीलुल गई पे है, तो उसके लिए भी हर वक्त हिदायत पे आने के चांसेस मौजूद हैं। उसकी भी ज़िंदगी में कोई राउंड अबाउट आएगा, या उसका कोई दोस्त उसको मिल जाएगा, कोई सहेली उसको बुला लेगी, कोई गम आ जाएगा, कोई दुख आ जाएगा, कोई खुशी आ जाएगी, जिसके बाद अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता है तो फिर वो हिदायत के रास्ते पर आता है। तो कभी किसी से मायूस ना हो, बस खुद जब सिराते मुस्तकीम पे चलते रहें तो आंखें खोल कर चलें, गौर करें। और यही वजह है कि दिन में 17 बार कम अज़ कम नमाजों में इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ मंगाई जाती है, क्योंकि हम सब हर वक्त ख़तरे में हैं। आप जानते हैं कि सफ़र में हल्का सा टर्न गलत ले लिया जाए तो कई मील आगे जाकर फिर एग्ज़िट आते हैं। इसी तरह हिदायत का मौका एक दफ़ा छिन जाए तो बाज़ दफ़ा फिर अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें इन रमज़ान के बाकी दिनों से फ़ायदा लेने वाला बनाए, और जो छूट गया उसको छोड़कर जो है उसको लेने वाले हम बन जाएं। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से में आने और भाई से जवाबदेही का तस्करा है, जिसमें अमल की बात क्या है कि एक ईमान वाला शिर्क होता देखकर खुश नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जो ही गुस्सा दूर हुआ, दोबारा अपने काम पे आ गए और दोबारा उन तख्तियों को पकड़ लिया जिसमें हिदायत और रहमत थी। हम अपने गुस्सों को पालते हैं, हम गुस्सों को इतना लंबा खींच लेते हैं कि वो गिले शिकवे और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ों की सूरत अख्तियार करते हैं, और कई कई साल तक दूसरों से कतई कलामी भी नहीं करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम का अपने भाई से झगड़ा कोई जायदाद का नहीं था, माल का नहीं था, रिश्ते नाते होने या ना होने का नहीं था, बल्कि दीन के लिए गुस्सा था। और दीन के लिए गुस्सा आना सरासर ईमान की अलामत है, जबकि आप उसको कंट्रोल में रखते हुए अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके बाद नबी सल्लम की सिफ़ात आयत 157 में बड़े खूबसूरत तरीके से बयान की गई। पिछली किताबों में आपकी जो सिफ़ात थी, आप नबी भी थे, उम्मी भी थे, और आप लोगों को नेकियों का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते, और हलाल चीज़ों को पाक करते, गंदी चीज़ों को नापाक को हराम करते, और आप पर वो बोझ और तौक जो लोगों ने रस्म व रिवाज और ख़ानदान की कई बंदिशों की वजह से ताने हुए थे, अपने ऊपर लादे हुए थे, उनको उतार दिया। चंद लम्हों के लिए हम भी सोचें, नबी की तो ये खूबियाँ थी, आज उम्मत का क्या हाल है? क्या वाकई हम भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, लोगों को अच्छी बातों की दावत और बुरे बातों से रोकते हैं? और क्या वाकई हम नापाक और पाक का फ़र्क रखते हैं? और क्या आज हमने अपनी ज़िंदगियाँ रस्म और रिवाज के नाम पर बोझल तो नहीं कर ली? हमारी तो रस्में भी इतनी बोझल हो गई, खुशियाँ हमारी खुशियाँ फीकी हो गई, रस्मों ने हमारी खुशियों को बदमजा कर दिया, गिले शिकवों में जाके छुटती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि पूरी इंसानियत को अल्लाह के नबी पर ईमान लाने की दावत दी गई। आयत नंबर 158 दलील है इस बात की कि अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अब ये मेरा आपका काम है कि हमने लोगों तक आपके इस पैगाम को कैसे पहुँचाना है। फिर उसके बाद आयत नंबर 163 से चंद आयात में दोबारा असहाबे सब्त की बात हुई, यानी वो लोग जिन्होंने हीला किया और हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ ली और अल्लाह के हुक्म को बदल के रख दिया, जिसका आप कहना चाहिए कि डॉच देने की कोशिश की, धोखा दिया, हीला दिया। इस वाक़े की रोशनी में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, किसी भी सोसाइटी में हराम के मौके का मिल जाना अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। और दूसरी ये बात है कि जब किसी को गलत काम करते देख कर ना रोके तो जो सज़ा उनको मिलती है वो आपको भी मिलती है। और साथ ही ये कि हमें लोगों को अच्छी बातें कहते ही रहना चाहिए, वो माने ना माने, और मानेंगे जब हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे उनके लिए, लेकिन कम अज़ कम हमारा उज़र तो कायम हो जाएगा कि हमने अपनी सी कोशिश की थी। इसके बाद बनी इसराइल के अंदर फिर दोबारा जो मुख्तलिफ़ फ़िरकेबाजियाँ हो गईं उनका तस्करा करते हुए अल्लाह ताला ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है आयत नंबर 169 में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गुनाहों के मौके पे गुनाह भी करते हैं, बाद में कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा, और जब दोबारा फिर उसी गुनाह का मौका आता है फिर कहते हैं सयुग वरूलना। आजकल हम उर्दू में इसको बहुत सुनते हैं, और वो के अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। यानी अल्लाह ताला ने पिछली कौमों का तस्करा करके बता दिया कि जब गुनाह का मौका आए तो गुनाह करना, और बाद में कुछ समझाए तो कहना अल्लाह माफ़ कर देगा। ये पिछली कौमों का रवैया है जिस पे अल्लाह ताला की पकड़ आई थी। करो क्या, फिर 170 में बता दिया यू मस्त सुकून बिल किताब, किताब को थाम लो। असल में आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा को यही करना है, क्या तमस्सुक बिल किताब, हर बंदे के हाथ में कुरान किताब, समझना, पढ़ना, गौर व फिक्र, तदब्बुर है, इसको याद कीजिए, इसको हिफ्ज़ कीजिए, इसके लिए वक्त लगाइए। फिर अकामुस सलात, नमाजें फिर ही मज़े की होंगी, वरना तो नमाज भी फीकी होती है। और उसके बाद आयत नंबर 172 जो बड़ी अहम आयत है, इसमें वादे अलस्त की बात है जो अल्लाह ने हम सब से लिया जब हम अपने बाप आदम की पुश्त में थे। इसका मकसद क्या था? जैसे कंप्यूटर की ज़ुबान में आप कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वक्त पड़ने पे उनको निकाल सके, तो अल्लाह ताला ने हमारे डाटा में ये सब कुछ डाल दिया कि तुम्हें दुनिया में जाकर किसको मानना है। वरना तो देखिए लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो जाती कि वो पैदा तो किसी नॉन मुस्लिम घर में होते और उनको मुसलमान होने का हुक्म दिया जाता, और एक एथियस तो बेचारा कहता मुझे तो किसी ने रब का बताया ही नहीं। तो याद रखिए अल्लाह तक पहुँचने के चार रास्ते हैं। एक तो ये वादा अलस्त है, हम सब मुसलमान, काफिर, फाजिर, नेक, बद सब वादा कर चुके, और ये चीज़ हमारी मेमोरी में डाल दी गई। आप कहते हैं हमें तो याद ही नहीं, तो क्या हमें ये याद है जब हम पैदा हुए थे, कब हुआ, क्या हुआ? तो जब बचपन की बातें याद नहीं तो ये उससे पीछे की बात याद ना हो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ अक्ल है, अक्ल से बैठ के इंसान सोचे तो एक रब का वजूद समझ आता है और उसकी इताअत भी समझ आती है। कायनात का डिसिप्लिन देखें तो ख़ुद को भी अल्लाह के आगे झुकाने को दिल चाहता है। तीसरी चीज़ कायनात है, आप इतनी इस खूबसूरत कायनात को देखते हैं तो आपको लगता है कि इसको बनाने वाला कोई है जो इन सब को चला रहा है। और चौथी चीज़ है रेवोल्यूशन, यानी वही वक्त के नबी ने आकर इसकी दावत दी। हम मुसलमान खुशकिस्मत हैं, आज हमारा दीन महफूज है, लेकिन बाकी कौमों के पास भी तो आया था, लेकिन उन्होंने ख्वाहिशों की बिना पर उसको झुटला दिया। फिर इसके बाद आप आयत नंबर 175 से ऑनवर्ड कुछ आयात में एक ऐसा किरदार पेश किया गया कि जिसको अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने उसको उस इल्म ही से इज्जत भी देनी थी, दुनिया की नेमतें भी देनी थी, लेकिन शैतान उसके पीछे लग गया और उसने उस इल्म को उसके लिए फितना बना दिया। दुनिया की मोहब्बत इतनी आई कि मादा परस्त हुआ, इल्म का फंदा गले से उतार दिया और ख्वाहिशों भरी ज़िंदगी को पाने के लिए हर वक्त मेहनत मशक्क़त में पड़ने लगा। ऐसे लोगों की मिसाल देकर अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं कि कुछ लोग आखिरत के लिए जीते हैं और कुछ लोग दुनिया के लिए जीते हैं। जो दुनिया के लिए जीते हैं वो सोचते नहीं, यानी अल्लाह ताला ने इसमें ये बात बता दी कि एक इंसान का जीना है, एक जानवर का जीना है। आप देखिए, जानवर अमूमन वतन और फर्ज के लिए जीते, खा लिया और बच्चे पैदा कर लिए। अगर इंसान की भी ज़िंदगी का यही मकसद है तो फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला अपने नामों पे गौर व फिक्र करवाते हुए इस बात की हकीकत बताते हैं कि क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं, हत्ता कि आपने अपने नबी को भी ये इल्म नहीं दिया, ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद आयत नंबर 189 में औरत और मर्द के ताल्लुक का खूबसूरत तस्करा है कि कैसे औलाद पैदा होने वाली होती है, तो बड़ी अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बाज़ दफ़ा उनको बाज़ बुज़ुर्गों और पीरों के नाम पे लगा देते हैं, उनके मुशरिकाना नाम रख लेते हैं, या बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करते और अल्लाह की दी हुई औलादों को शैतानी कामों में लगा देते हैं, चाहे वो जानते कब करें या ना करें। लेकिन हकीकत है कि जब तक हम अपनी औलादों को अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे, वो शैतान के चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे। फिर उसके बाद शिर्क की कुछ कबाहतों को बयान करते हुए एक असूल दे दिया कि लोगों के साथ अफ़ो दरगुजर का मामला कीजिए और जाहिलों के मुंह ना लगिए, यही खुश रहने का राज है। और उसके बाद कुरान सुनने का अदब, आयत नंबर 204, कि जब कुरान पढ़ा जाए सुना जाए तो फस्तमेउ लहू, गौर से सुनो, वंसितु, और खामोश भी रहो, क्योंकि एक वक्त में दो आवाज़ें सुनेंगे तो दोनों का असर नहीं होगा। और कुरान अल्लाह का कलाम है जिसको मैं और आप बेहतरीन तरीके से तभी सुन सकते हैं जब हम पूरी तवज्जो उस तरफ करें। फिर आयत 206 में पहला सजदा है जो फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन कर लिया जाए तो बहुत अजर भी है और ना करने पे गुनाह नहीं है। फिर इसके बाद सूरत अनफाल शुरू होती है जो नबी सल्लम की सीरत हमारे सामने खोल के रख देती है। गज़वे बदर की सूरत में पैदा होने वाले सवाल का जवाब देने से पहले उम्मते मुस्लिमा को अपने ताल्लुकात को बेहतर करने, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल की दावत देने का हुक्म हुआ, और साथ ईमान वालों की खूबी बता दी कि जब अल्लाह का कुरान सुनते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं, उनकी आंखें बहती हैं और वह अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। ज़रा सोचिए, जब मैं कुरान पढ़ती या सुनती हूँ मेरी क्या एक हालत होती है? क्या मैं बिल्कुल ना समझ लोगों की तरह सुनती हूँ या मुझे समझ आ रहा होता है? और उसके बाद आप देखिए कि गज़वे बदर की कुछ झलकियाँ, जिसका थीम क्या था कि अल्लाह हक को हक करता है। मुसलमानों का इरादा था कि आसानी का मामला हो जाए, लेकिन अल्लाह ने मुश्किल में डालकर सिखा दिया कि अल्लाह लोगों से नहीं डरता और हक को साबित करने के लिए ऐसे मामलात आते ही हैं। फिर उसके बाद गज़वे बदर में जब मुसलमानों की मदद की गई थी मुख्तलिफ तरीके से, उसका तस्करा करके मुझे आपको बता दिया, आज भी अगर मुसलमान अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जियेंगे तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन तरीके से मदद भी देंगे और दुनिया में उनका गलबा भी होगा। आयत नंबर 20 से अब फिर कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को खुशी से मानो, मुंह ना फेरो और सुनो। क्या बताया गया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, खुशी से मानो। रोते धोते काम करने वाले खुश नहीं करते काम करने के बावजूद। फिर इसके बाद आयत नंबर 24 जो वाकई साहब पारे की एक और आयत तदब्बुर है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की दावत पे लब्बाई कहने की बात है। ज़िंदगी के हर मामले में, वो दावत तबलीग हो, वो जिहाद हो, वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हों, वो औरत मर्द की बहस हो, हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की दावत को लब्बाई कहिए तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरतियों से गुजरेगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बता दिया आयत नंबर 29 में कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके अंदर एक ख़ास खूबी पैदा करेगा कि उसको हक और बातिल का फ़र्क पता चलेगा, उसकी बुराइयों को माफ़ करेगा और उसके गुनाहों को छुपा लेगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमारे साथ भी ऐसा ही मामला करे। इसमें एक और बात भी बता दी गई कि जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में आ जाते हैं फिर अल्लाह ताला उनको रास्ते भी दिखा देता है, और जब तक लोग इस्तग़फ़ार करते रहते हैं तो अल्लाह ताला की पकड़ से बचे रहते हैं। और फिर पारे के बिल्कुल आखिर में बात कर दी गई कि दीन को गालिब करो, व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, मेरा आपका यही काम है। हम अपनी हर कोशिश से अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना चाहें, कोशिश करें कि लोग इसके साथ जुड़े रहें, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। पारा बहुत खूबसूरत था, हमने इसमें बहुत सी बातें सीखी। चंद बातें अपने लिए चेकलिस्ट के तौर पे बना लेते हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है, इल्म हासिल करना है, हर हाल में अल्लाह की बात को मानने की पूरी कोशिश करनी है, अगर कोई आजमाइश आ जाए तो अल्लाह का और कुर्ब लेना है, शौरी ईमान लेना है, अल्लाह के डर से आमाल अच्छे करने हैं लोगों के डर से नहीं, और साथ साथ हमने अपना जायज़ा लेना है कि मेरे पाँव किस चीज़ ने पकड़ रखे हैं, क्या मैं भी दुनिया में पढ़कर आखरत को भूली तो नहीं रहती। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक दे। पारा नंबर 9 की आयात तदब्बुर सूरत अल आराफ आयत नंबर 146 है। थोड़ा सा इसको देखिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं सास्टिफन आयात ही अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दी बिगैरिल हक, अन करीब मैं उन लोगों को अपनी आयतों से हटा दूंगा जो ज़मीन में नाहक तदब्बुर करते थे। क्या है इनका तकब्बुर? वहीं यरौ कुल्ल आयतिल ला यूमिनू बिहा, अगर वो देखें कोई आयत कोई निशानी तो ईमान नहीं लाते। वहीं यरौ सबीला रुश्दी ला यत्तखिज़ूहु सबीला, जब वो भलाई का रुश्द का खैर का रास्ता देखते हैं तो उसको बिल्कुल इख्तियार नहीं करते। वहीं यरो सबील अलगैजी यत्तखिज़ूहु सबीला, जब वो गुमराही का रास्ता देखते हैं तो उस पे चल पड़ते हैं। वजह ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इसकी वजह यह है कि वो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। वकानू अन्हा गाफिलीन, और वह इनसे गाफिल थे। देखा जाए तो यह आयात वाकई हमारी तवज्जो चाहती हैं। इस दुनिया में हिदायत और गुमराही साथ साथ चलती हैं, क्रिस क्रॉस हैं। हिदायत अलग से और गुमराही अलग से नहीं है। फिर तो कभी नेक और बद लोगों का टकराव ना हो। हम देखते हैं कि हमारा इंट्रैक्शन कभी अच्छे लोगों से होता है, कभी बुरे से। एक इंसान अच्छे रास्ते पर चलते चलते एकदम किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहाँ से उसका रास्ता फिर बदल जाता है। इस पर एक प्रेजेंटेशन भी है, उसकी रोशनी में बात बहुत समझ आती है। बस अल्लाह हमें अपना मुहासबा करने वाला बनाए कि मेरा अमल क्या है, क्या वाकई मैं इन आयतों पे गौर व फिक्र करती हूँ, और अल्लाह ताला आसान फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।